जैसे ही शत्रुपा देवी का स्ट्रेचर धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार से होता हुआ अंदर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे शांत और आराम से चलने वाली हवा रौद्र रूप धारण कर रही थी। हालांकि मौसम ने अपना रुख एम्बुलेंस से उनके स्ट्रेचर के निकलने तक में ही बदल दिया था। अभी अच्छा खासा शाम का समय हो रहा था। हल्की हल्की बहती हुई हवा दिल को सुकून दे रही थी, लेकिन तुरंत आसमान में काले बादल छा गए थे। ऐसा लगा जैसे कि रात हो गई। ये क्या हो रहा है? दामिनी जी ने नव्या जी की तरफ देखते हुए पूछा। दोनों ने हाथ में आरती की थाली और फूल मालाएं ले रखी थी। शत्रुपा देवी के साथ साथ आज महल का चश्म चिराग भी इतने सालों के बाद आया था। विक्रम प्रताप और विकल्प भी आए थे, लेकिन दोनों आने के साथ ही घर की बजाय सीधे अस्पताल चले गए थे। अब हॉस्पिटल से घर आ रहे थे तो स्वागत उनका भी करना था, और उसी के लिए महल में जबरदस्त तैयारी हुई थी। पर हवा इतनी तेज थी कि उसने सारी तैयारी की हवा निकाल दी थी। उसने आरती की थाली में से दिया बुझा डाला था। दीपक तो बुझ गया भाभी सा, नव्या जी बोली। शत्रुपा देवी की तरफ से हटकर ध्यान अब थाली पर आया था। मैं जला कर लाती हूँ, दामिनी जी बोली। कोई फायदा नहीं होगा भाभी सा, हवा देख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर का तूफान आने वाला है। ऐसे में दिया यहाँ पर नहीं थमेगा, हम आरती महल के अंदर ही कर लेंगे, यहाँ पर बस स्वागत कर लेते हैं, नव्या जी ने कहा। ठीक कह रही हो, यहाँ पर फूलों से और चंदन कुमकुम लगाकर स्वागत कर लेते हैं, आरती महल के अंदर कर लेंगे, दामिनी जी ने कहा। लेकिन उसकी भी नौबत नहीं पड़ी थी। एकाएक अचानक जो ये तूफान आया था कि उसके कारण राजकुमार विक्रम प्रताप सिंह बुंदेला के स्वागत करने के लिए जितने भी लोग आए थे, वे अब महल के सामने वाले खुले मैदान से हटकर एक सुरक्षित शेड की तलाश करने लगे। आसमान में फैले हुए काले बादल जोर जोर से गरजने लगे थे। इनकी आवाज शत्रुपा देवी के कानों में एक डरावनी सी हरण पैदा कर रही थी। तभी बादलों के कड़कने की आवाज के साथ उन्हें घुंघरू के बजने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने छट से अपनी आंखें खोल दी। सामने वैशाली बंजारन झूम झूम कर नाचते हुए घूमर करना शुरू कर चुकी थी। इस तेज तूफान में जहां सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हो रहे थे, यहां तक कि हवा के वेग से अस्पताल के कर्मचारियों को स्ट्रेचर थामना मुश्किल हो रहा था, वहीं वैशाली उनके स्ट्रेचर के चारों तरफ घूमते हुए घूमर कर रही थी। घुंघरू उसके पैरों में नहीं बल्कि हाथों में बंधे हुए थे। पैर तो आज तक उन्होंने उसके घाघरे के नीचे से देखा ही नहीं था। आज पहली बार शत्रुपा देवी ने इसे नोटिस किया था। अरे जल्दी करो यार, पानी पड़ने लगा तो बड़ी मासा भींग जाएंगी, विक्रम ने दामिनी को किनारे करते हुए कहा। शत्रुपा देवी का स्ट्रेचर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वैशाली आराम से शत्रुपा देवी के स्ट्रेचर पर बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही स्ट्रेचर महल के मुख्य द्वार से अंदर गया, आशी झटके से उठकर खड़ी हो गई थी और वैशाली की आंखें उसके चेहरे पर टिक चुकी थीं। आशी ने मुख्य द्वार पर अपनी बड़ी मासा के स्वागत के लिए खूबसूरत रंगोली बनाई थी, पर इस वक्त बाहर इतनी जो बारिश होने लगी थी कि बिना देखे समझे सब लोग दौड़ते हुए अंदर की तरफ चले आ रहे थे, और इसी में उसकी पूरी रंगोली का सत्यानाश हो चुका था। आशी आंसू से भरी आंखों के साथ कभी अपनी रंगोली की दुर्दशा देख रही थी तो कभी बड़ी मासा के स्ट्रेचर की तरफ। उसके सारे अरमान इस रंगोली की तरह मिट्टी में मिल चुके थे। आशी को देखकर वैशाली के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट खेल गई थी। कभी तूने भी मेरे अरमानों को इसी तरह से मिट्टी में मिलाया था, अब आ रहा है ना मजा, कैसा लग रहा है जब खुद के अरमान मिट्टी में मिल रहे हैं, कहते हुए वैशाली एक ताली बजाकर बहुत जोरदार तरीके से हंस पड़ी। शत्रुपा देवी मूक दर्शक बनी हुई ये तमाशा देख रही थी। तभी इन दो जोड़ी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर शत्रुपा देवी की आंखों में संतोष, आनंद और शांति उतर आई थी, तो वैशाली की आंखें उससे लाल होकर जलने लगी थीं। हर हर महादेव।